बताओ शहर में हज के लिए जाना चाहते थे, तो पासपोर्ट के लिए फोटो की तो जरूरत है ना, तो इतने मुखालिफ थे फोटो के तस्वीर खींचने की कि हुकूमत से राबता कायम किया गया। उसके बाद जो है हुकूमत से स्पेशल परमिशन मिला कि इनको बगैर फोटो के जो है हज के लिए रवाना किया गया। वहाँ जो है उस दौर में बहुत ज़्यादा था वहाबियत का दौर अब्दुल वहाब रजदी का, उस वक्त पे जो है इनको बहुत बड़ा विद्वती यहाँ आ गया है बोल के अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है वहाँ के बादशाह के सामने पेश किया गया, तो आप जो ये बता रहे हैं कुछ उनके मसले थे तो पूछे इनका जवाब दो तीन दिन में नहीं तो जेल। तो हुजूर जो है लिखते गए, अब उनको जो है गवाह के तौर पे या उनकी इस्लाह के तौर पे एक दो तीन चार पाँच छः दस दे सकते थे, हुजूर सीधे हाथ से लिखते गए खत्म नहीं हो रहे, फिर दाहिने हाथ से सीधा हाथ बाया हाथ सीधा दाहिना सीधा बाया दोनों हाथ से लिखे उसके सामने पेश कर दिए, तो बादशाह दंग हो गया। ये सब है क्या इस्लाम में, ये सब शरीयत में? हाँ है, देख ऐसे भी हिसाब वाक्य जो है सरकार आपको सुनाएंगे। नसीबे दोस्ता अगर उनके दर पर मौत आनी है, बुरहानुद्दीन साहब नसीबे दोस्ता अगर उनके दर पर मौत आनी है, खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है, खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी, वहां मरे तो हमेशा जिंदगानी है। हजरत मोहतरम उसके बाद जो है मैं हमारे इमाम खतीब जनाब शफीकुर रहमान साहब हैं शफीक अहमद खारजी रजवी मजीद हसन सुल्तान पर लिया, उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके सामने मगरिब तक जो है इमाम अहमद रजा के बारे में और सूफीज़म के बारे में आपके आपसे मुखातिब होंगे। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह फिर हमारी दूसरी मजलिस शुरू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد مولى المؤمنين بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات خطبہ رسول اللہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں اس سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضران آرام فرمانے والے آقا سیاح لامقا خاتم پیغمبر امین سے بے پسا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصد پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاتن و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتن و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاتن و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے
तुम हरगिज नहीं पाओगे उन लोगों को जो अल्लाह से डरते हैं और जिनके दिलों में ईमान है कि उनसे ताल्लुकात रखें, उनसे दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, चाहे वो उनके बाप हों, चाहे वो उनके भाई हों, चाहे वो उनके किसी रिश्ते के हों। उलाइका तज़ाफ़ी क़ुलूबुहुम ईमान, और वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान वच बस गया है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ह तौर पर और खुले अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि जो नबी का दुश्मन हो, जो अल्लाह का दुश्मन हो, वो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, उससे हमारा कोई रिश्ता कोई नाता नहीं हो सकता है। हज़रात गिरामी, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में इस्लाम जो है इस्लाम का इब्तदाई दौर था और बाप मुसलमान हो चुका था, बेटा मुसलमान नहीं हुआ, बेटा मुसलमान हो चुका था, बाप ने ईमान को तस्लीम नहीं किया, कहीं बीवी ईमान ला चुकी है, शोहर ईमान नहीं लाया, यानी कि एक घर के अंदर चार फर्द हैं और चार में से दो ईमान ला चुके हैं और दो ईमान नहीं लाए हैं, कहीं तीन है एक ईमान ला चुका है दो ईमान नहीं लाए हैं। महतरम असराज, उस जमाने में जबकि उनके लिए ईमान बिल्कुल नई चीज थी, उससे पहले उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि अल्लाह एक है और इन तमाम बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, इन तमाम की परस्तिश नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से 500 कुछ साल के बाद तक कोई पैगंबर नहीं आए थे। वो जमाना जो है उस जमाने में इतने पीरियड में कोई नबी नहीं रहा, तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि हमें एक रब की इबादत करना चाहिए, एक रब की पूजा करना चाहिए। और उसके बाद जब लोगों को बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रब की पहचान कराई, फिर जो लोग ईमान लेकर आ गए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने यह पैगाम सुना दिया कि तुम्हारा वो कुछ नहीं हो सकता है जिस जो नबी और अल्लाह का ना है, जिसके दिल में नबी और अल्लाह की मोहब्बत ना है, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो चाहे तुम्हारे बाप है चाहे तुम्हारे भाई है। तो मोहतरम हज़रात, ये बात से हम सिर्फ कहकर जो है इससे इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये उस जमाने के लिए था, बल्कि वो पुराने मुकद्दस का फरमान है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है कि उसी जमाने की बात है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और उस पुराने मुकद्दस में उस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया है जिस किताब के बारे में खुद रब फरमा रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। जो पुराने बाद में शक व शुबा करेगा उसका ईमान गोया के नामुकम्मल है। तो मालूम यह हुआ कि यह कानून खुदाबंदी इस जमाने के लिए नहीं था, बल्कि सुरे मयामत तक के लिए, जब तक जो है कुरान मुकद्दस कायम रहेगा उस वक्त तक कुरान मुकद्दस का ये कानून कायम रहेगा, और उस वक्त तक जो है ये कानून बाकी रहेगा, और यही कानून जो है हर एक इस्लाम में दाखिल होने वाले के लिए लाजमी और जरूरी होगा। अब बोला कि जो इस पर अमल नहीं करेगा वो इस्लाम से जो है वो इस्लाम वो उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया और अल्लाह के हुक्म की पामाली की है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, तो ऐसे शख्स का इस्लाम में कोई जो है हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, और उसका जो है इस्लाम में रहने से उसको फायदा नहीं पहुंच सकता है और जो है उसको कोई फैज हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी हम लोग अमल करते हैं इन सब का दार मदार जो है वो ईमान पर मुंहसिब है। इंसान चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर उसका ईमान नहीं है तो नमाजों से उसे कुछ फैज पहुंचने वाला नहीं है। कोई आदमी दिन रात जो है शफादत को दरिया बहा रहा है और दिन भर जो है वो पैसा राय के बारे में बिता रहा है, ईमान उसका अगर नामुकम्मल है तो उसको इस राय के बारे में खर्च करने से भी उसको कोई फैज नहीं पहुंच सकता है। तो मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह के बारे में ताला ने 1400 साल पहले जो किताब नाज़िल हुई वो उसमें इरशाद फरमाया गया है। मोहतरम हज़रात, अब ईमान क्या चीज है, ईमान किन चीजों से जाहिर होता है, और ईमान की असल जो ताकत है, ईमान जिस चीज में छुपा हुआ है, क्या नमाज पढ़ने से एक इंसान मुसलमान हो सकता है, क्या लंबी दाढ़ी रखने से एक इंसान मुसलमान हो सकता है, जो उनके पास रोक पहनने से पगड़ी पहनने से मुसलमान हो सकता है, या जो है वो अपना पिगड़ाए प्रदान करने से आसान हज को जाने से मुसलमान हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये जिन चीजों पर इस्लाम विमान में हासिल नहीं है बल्कि ये आमाल है। अगर एक साहिब विमान ये अमल करेगा तो उसका हज मिलेगा, और ना करेगा तो गुनाहगार होगा। लेकिन ऐसा नहीं करो काफिर हो जाए। अगर कोई आदमी नमाज छोड़ रहा है तो पुत्र का फतवा नहीं दे सकते हैं, अगर कोई दारू नहीं रख रहा है तो पुत्र का फतवा नहीं दे सकते हैं, अगर कोई रमजान को रोजे नहीं रख रहा है, हज में नहीं जा रहा है तो पुत्र का फतवा नहीं है। वो ना करने वाला गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसका ईमान बाकी है। अगर वो तौबा कर ले और फिर उसके बाद ये अमल करे तो साबिता उसके गुनाह माफ हो सकते हैं। लेकिन अगर ईमान उसके पास नहीं रहा तो उसके लिए उसका कोई अमल की काबिलियत दिल नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पुराने मुकद्दस में जहां भी इरशाद फरमाया है, चाहे वह नमाज का जिक्र हो, रोजे का जिक्र हो, ज़कात का जिक्र हो, इन तमाम का जो है ईमान वालों से खिताब फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नास कहकर लोगों को नमाज का हुक्म नहीं दिया है। लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है, मोमिनीन पर नमाज फर्ज है। और मोमिनीन के लिए जो है ज़कात का हुक्म दिया गया है, मोमिनीन के लिए नेक अमल का हुक्म दिया गया है। तो मोहतरम हज़रात, हमें देखना यह है कि आखिर ईमान किस चीज को छुपा हुआ है, ईमान क्या चीज है। मोहतरम हज़रात, उस जमाने की बात, जिस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने कदम जमाए और यहाँ की जो मुस्लिम हुकूमत थी, मुस्लिम सल्तनत थी, उस पर उन्होंने हमला किया और इनको जो है उनसे सल्तनत को छीन लिया। यह अलग बात है, मेरे से अटकर है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जब वो यहाँ पर आए और फिर यहाँ के मुसलमानों को उन्होंने करीब से देखा और फिर ये बात यह इस बात का अंदाजा लगाया, इस बात की उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी ताकत है मुसलमानों के पास, वो कौन सी ताकत है मुसलमानों के पास जिसकी वजह से जो है वो मुसलमान काफी से या दुश्मन रसूल और दुश्मन खुदा से, दुश्मन इस्लाम से मुकाबला करने के लिए जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। इस बात का अंदाजा उन्होंने लगाया और वो समझ गए कि इनके पास में एक चीज जो है इसके रसूल का जो मामला है, नबी की मोहब्बत का जो मामला है, यही उनके लिए सबसे अहम है। अगर उनको बेनमाजी बना दिया जाए तो इससे कोई हमें कैज नहीं पहुंच सकता। अगर उनके चेहरे से गाड़ियों को निकाल दिया जाए तो कोई कैज नहीं पहुंच सकता। अगर हमें इनको कमजोर करना है, अगर हमें इन्हें अपने रंगे रंगना है तो इनके सिरे से इश्क रसूल को निकालना पड़ेगा, इनके सिरे से नबी की मोहब्बत को निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक सही माना में जो एक मुसलमान होता है वो कहता है जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर मगर न होगा ये हम से हर भी तो नबी का जाहे जलाल देंगे। यानी एक सच्चा और सही पक्का सुन्नी सही अली का जो मुसलमान होता है वो अपना ईमान जो है वो यानी नबी का इश्क जो है, नबी की मोहब्बत जो है, वो कभी जो है अपने सीने से नहीं निकालता है और कभी जो है ऐसी बातों को अपने करीब नहीं आने देता है जिससे जो है दुश्मन यानी जिससे नबी की बगावत जाहिर हो रही है। तो हजरात, इन अंग्रेजों ने बड़ी देर से करीब से देखा तो इन्होंने दो गिरोह तैयार किए, इन्होंने दो गिरोह तैयार किए। एक तो जो है ऐसा इंसान तैयार किया जो मुसलमानों जैसे हुए में था और बिल्कुल जो है मुसलमान लगता था, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं था। और एक जमात इन्होंने ऐसी तैयार की जो बजाहिर एक तरह से जो है बिल्कुल व्यक्ति वो लगता था, लेकिन वो इस्लाम की बातें बहुत सारी जानता था। कुरान की आयतें उसे याद थी, हदीस भी उसे याद थी और इस्लाम के तराइज भी उसे याद थे, इस्लाम का तौर तरीका पूरा उसे याद था। अभी दोनों जमातों को इन्होंने मुसलमानों के दरमियान जोड़ दिया और मुसलमानों के करीब कर दिया। अब इन्होंने जो है मुसलमानों के करीब आने के बाद मुसलमानों ने अपनी तालीमात को आम किया। मोहतरम हज़रात, ये उस दौर की बात है जब मुसलमान ऐसी बातों को नहीं जानते थे बल्कि सिर्फ उनके दिल के अंदर एक ही बात थी कि हमें जो है नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत से हमें जो पैगाम मिला है और नबी ने हमें जो तरीका बताया है वही हमारे लिए असल है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते थे हिंदुस्तान के मुसलमान, जबकि वो दीन जो है वो मस्जिद के अंदर पैदा हो चुका था और मस्जिद में बोला जा चुका था, वो एक तरफ की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन अतः वो बुराई अभी नहीं पहुंची थी जब हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने इस्लाम का बहुत करीब से मुताला किया और लोगों को ये बात जो है लोगों के दिलों से, लोगों के सीने से ईमान को चुराने की कोशिश की और ईमान को खींचने की कोशिश की। तो उन्होंने इन दोनों पीढ़ियों को, दोनों जमातों को जो मौलवी मिला गाते थे उनको मुसलमानों की जमात में छोड़ दिया और जो दूसरे हुए के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अपने हैं या गैर हैं, इनका पैगाम क्या है। मोहतरम हजरात, आप तमाम दानिश पर लोग हैं, आपने तारीख का मुताला किया है, आप इन मसलानियों की यहूदियों की साजिशों को अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, ये हाफिज़े कुरान भी रहते हैं, हदीस भी जानते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से यहूदियों की जो है वो इसी काम में लगी हुई है, वो आलिम हाफिज तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आलिम हाफिज तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के अंदर जाकर जो है मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करे, मुसलमानों के टुकड़े में तकसीम कर दे, मुसलमानों के अंदर जो है वो एक तरह से जो है मुसलमानों के अंदर वर्तिका की डाले और मुसलमानों के टुकड़े में तकसीम कर दे, मुसलमानों की जमातें बनाए और फिर जो है इनके दिलों से। अब आप देखते हैं आज तरह तरह की बातें प्यारे आका आले सलाम के सलाम के बारे में सुनने के लिए मिलती है। मोहतरम साहब, जब ये बातें हिंदुस्तान में फैलना शुरू हुई तो उस जमाने में सिद्दीकीना इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा काजी बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डटकर मुकाबला किया और पूरी दुनिया वालों को यह बता दिया कि तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुम गुमराह नहीं कर सकते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं पहुंचा सकते हो। मोहतरम हजरात, हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीन मिल्लत ने वो कार हाय निभाया अंजाम दिए हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर इनकी लिखी हुई किताबों का आज कोई जवाब नहीं है और आपकी जो है जिंदगी जात की करामत जो है मोहतरम हजरात कुरान मुकद्दस का वो शरीर की कुर्सीदा सादा तर्जुमा तर्जुमा तंजिल ईमान है, किताब रजविया है और भी बहुत सारी आपने जो है हजार से ज्यादा किताबें लिखी है और इन तमाम किताबों को लिखकर पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया है, कहे दुनिया वालों अगर तुम्हें दुनिया में रहना है और अपनी आखिरत को कामयाब बनाना है तो तुम्हें जो है प्यारे आकाले सलात व सलाम के रास्ते से मुनहरिफ नहीं होना है, उनका दामन नहीं छोड़ना है। अगर तुम के रास्ते से मुनहरिफ हो गए, अगर तुमने आका का दामन छोड़ दिया तो याद रखो दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी तुम जमीन उठना रहोगे, आखिरत में भी तुम्हें कोई मकान मिलने वाला नहीं है और दुनिया में भी तुम जो है जमीन हो जाओगे। तो मोहतरम हजरात, हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा आला हजरत काजी बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया वालों को पैगाम दिया, तहरीरी तौर पर भी पैगाम दिया, तकरीरी तौर पर भी पैगाम दिया, अमली तौर पर भी पैगाम जो है तमाम दुनिया वालों तक पहुंचाया। मोहतरम हजरात, प्यारे आका आले सलाम के सलाम की जो तालीमात है एक किताबी शक्ल में है यानी हदीस जिसको हम कहते हैं और एक अमली तौर पर है। हजरात कुरान, हम जब हदीस से बात करते हैं तो हमें आका की जिंदगी समझ में आती है कि आका आले सलाम के सलाम ने हमें क्या पैगाम दिया है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें उसका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है तसलसल बाकी रहेगा। पहले नमाज मगरिब अदा कर ली जाएगी, तमाम हजरात बाद नमाज के दिन तशरीफ रखते हैं, इंशाल्लाह खुद जो है ये सिलसिला बाकी रहेगा। सलाम अलैकुम। السلام عليكم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلی علیه صلوات و سلام علیه یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم۔ محترم حضرات، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله۔ محترم حضرات، مناسبت سے جو پورے ہندوستان میں مجدد دین ملت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اس کی مجالس سے محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، بار بار یہاں بھی جناب سلیم ہزاروی صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں، اسی مناسبت سے میں یوں تو حضور اعلی حضرت امام احمد رضا کی شخصیت جو ہے وہ محتاج تعریف نہیں ہے، جو اردو کا حضرات ہیں جو علم سے محبت رکھتے ہیں، علم دین جو حاصل کیے ہوئے ہیں یا اہل علم سے جن کا رابطہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ احمد رضا کیسی شخصیت کے حامل تھے اور انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ حضرات، امام احمد رضا صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ بہترین اور کامل صوفی بھی تھے، کامل بزرگ بھی تھے اور عارف اللہ بھی تھے، معرفت رسول کا جان بھی انہوں نے کیا تھا اور اللہ کی معرفت کا مقام بھی انہوں نے حاصل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو بے پناہ علوم عطا فرمائے تھے. امام احمد رضا ایسی شخصیت ہے کہ یہاں ہندوستان کے علماء ہی نے ان کے علم کو نہیں مانا بلکہ جب آپ حضرت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں بھی کوئی معاملہ درپیش آیا تو یہ تو امام احمد رضا کے متعلق میں جتنا بھی عرض کروں کم ہی کم ہے, لیکن آپ کی زندگی کے چند واقعات, کیونکہ جو بزرگوں کے واقعات سنے جاتے ہیں تو ان کے بزرگ واقعات سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ للابصار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن شریف میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں, یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں, جو ان کی امتوں کے ساتھ میں جو معاملہ ہو رہا ہے, وہ واقعات قرآن شریف میں جو بیان کیے گئے ہیں ان کو قصے کہا گیا ہے. یعنی وہ قصے اہل علم کے لیے, اہل بصیرت کے لیے اس کے اندر بے شمار بھلائیاں, بے شمار حکمتیں اور بے شمار خوبیاں ہیں. تو جب ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایمان احمد رضا جب حضرت اللہ کے لیے تشریف لے گئے, اس سے پہلے آپ کی ابتدائی سے جو ہے ایسے ایسے واقعات نمایاں ہوئے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی, آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی, استاد کے سامنے آپ کو لے جا کر بٹھایا گیا, آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پھر آپ کو الف با تا سا کی پوری ترتیب پڑھائی گئی. جب آپ پڑھتے پڑھتے لام علیف پر پہنچے تو آپ نے لام علیف استاد بول رہے ہیں پڑھے, لیکن آپ نے نہیں پڑھا. استاد بھی بولتے ہیں پڑھو, آپ کے دادا حضرت وہاں پر موجود تھے, دادا بولتے ہیں بیٹا استاد کا حکم ماننا ضروری ہے پڑھو. جب اس دادا نے بھی کہا تو آپ نے نام علی پڑھ کے لیا, لیکن دادا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا, دادا سمجھ گئے کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے, اس کو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ترقی ہو رہا ہے, یہ ان تمام رموز کو جانتا ہے لیکن ان کو جو ہے ہم سے پوچھنا چاہتا ہے. پھر دادا نے کہا بیٹا تمہاری نگاہ بتا رہی ہے کہ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہم علی بھی پڑھ چکے ہیں, نام بھی پڑھ چکے ہیں, چونکہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ علی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں پڑھ چکے ہیں تو پھر دوبارہ ان حروف کو کیوں جو ہے لکھا گیا, آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جو فرمایا گیا بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے, بعد میں آگے چل کے تم کچھ سمجھ لو گے. کہا نہیں, اس کا مجھے آگے جو ہے اس کی دلیل چاہیے کہ اس کو کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے. تو آپ کے دادا فرماتے ہیں بیٹا جو پہلا جو حرف دو سے پہلا جو حرف ہے جس کو تمہیں الف پڑھایا گیا ہے وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں وہ حمزہ ہے, وہ بشکل الف ہے لیکن وہ حمزہ ہے. اور الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے, الف ساکن ہوتا ہے, الف پہلے نہیں آتا ہے اور الف پر کبھی حرکت نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو ہے لام کے بعد الف لایا گیا ہے, لام الف بچوں کو بتانے کے لیے. تو آپ نے دوسرا اعتراض کر لیا, آپ فرماتے ہیں کہ الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں لایا گیا ہے, با الف بھی ہو سکتا تھا, تا الف بھی ہو سکتا تھا, سین الف بھی ہو سکتا تھا. حضرات یہ 4 سال کے بچے کی بات ہے, آج 50 سال 60 سال کے لوگ نہیں جانتے, وہ اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ لام الف کیوں لایا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. آپ کے دادا فرماتے ہیں بیٹا یہ لام کے ساتھ الف کو اس لیے لایا گیا ہے کہ لام کو اور الف کو جو ہے آپس میں مناسبت ہے. لام جو ہے ابتدا اس کی الف کی طرح ہوتی ہے, بعد میں نیچے تھوڑا سا لا کر پھرا جاتا ہے تو وہ لام بن جاتا ہے. گویا کہ لام اور الف میں ابتدائی مناسبت ہے, اس وجہ سے مناسبت کی بنیاد پر دونوں کو ملا کر لکھا گیا. تو حضرات یہ احمد رضا جو شخصیت ہے ابتدا ہی سے جو ہے ان کے پاؤں ایسے بغیر پر جا رہے تھے, ایسی راہ پر پڑ رہے تھے کہ لگ آپ کے بعد بہت خوش ہوتے تھے کہ یقیناً میرا یہ پوترا بڑا ہو کر بہت کچھ بننے والا ہے. اور یہی ہوا کہ امام احمد رضا پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن کر جو ہے آگے بڑھے اور پوری دنیا کو انہوں نے اور محترم افراد اپنے نہیں بلکہ غیروں نے ان کی جو ہے ان کی صلاحیت کو اور ان کے علم کی جو ہے ان کی قابلیت کو بانٹ دیا ہے. جب آپ بیت اللہ شریف کو تشریف لے گئے تو وہاں پر کسی معاملے میں جو ہے کسی شخص سے جو ہے آپ کی کچھ گفتگو ہوئی اور شخص نے جو ہے آپ کو چیلنج کر دیا, اس وقت آپ کو جو ہے 105 ڈگری دکھا دیا, لیکن آپ اس کے چیلنج کو قبول کر لیتے. جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی لائبریری نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی کتابیں نہیں تھی, آپ نے وہیں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں. وہ لوگ بول رہے تھے کہ نبی کو تم حاضر ناظر دیکھتے ہو, نبی حاضر ناظر نہیں ہے, نبی کو تم غیب کی خبریں جاننے والا مانتے ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, نبی کو نور مانتے ہو یہ بھی نہیں. بہت ساری باتیں اس نے اعتراض کیے. آپ نے ان تمام باتوں کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب کے طور پر دولت المکیہ کتاب لکھی اور وہ کتاب شیخ کو پیش کی. شیخ اس کتاب کو پڑھ کر اور اس کے حوالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا. جب اس نے جا کر بخاری شریف کھولی, قرآن کھول رہا ہے تو جو ہر بات میں لکھا ہے تفسیر فلا لائن میں فلا آیت میں یہ اللہ نے فرمایا, یہ نبی نے فرمایا. جب وہ دلائل کو دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ جو ہے شیخ حبیب شریف قوم کی بارگاہ میں رکھا گیا, یعنی جو شیخ جو یہاں کا جو حاکم تھا اس کے پاس میں رکھا گیا. اس نے پڑھا تو حیران رہ گیا. اس کے بعد کہا کہ ہندوستانی اس بولی کی ہماری ملاقات کرائی جائے. ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد میں کہا مولانا ہم تمہاری صلاحیت سے بے حد متاثر ہوئے ہیں, اب تم جو چاہو مانگ سکتے ہو. حضرات یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پوری دنیا کے جو مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن کی جو جگہ ہے, جو مسلمانوں کا کام جو ہے, مسلمانوں کا جو ایک طرح سے مرکز ہے, وہ اس کا حاکم بتا دے رہا ہے. آپ چاہتے تو دنیا کی بہت ساری دولت حاصل کر سکتے تھے, سعودی عربیہ کی کوئی بہت بڑی پوسٹ کو آپ مانگ سکتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شہنشاہ, اور تم دے بھی جا سکتے ہو, تم کیا دے سکتے ہو, بس اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ ہے کہ میں ایک رات جو ہے مسجد نبوی شریف میں روضۃ الرسول کے سامنے بالکل تنہا گزارنا چاہتا ہوں. مسجد میں میرے علاوہ کوئی انسان وہاں کرنا ہو بس ایک رات میں گزارنا چاہتا ہوں. محترم حضرات یہ عاشق رسول کی پہچان ہے کہ اگر مانگتا ہے دنیا میں تو نبی کا عشق مانگتا ہے, نبی کی محبت مانگ رہا ہے اور نبی کے پاس گزارنے کے لیے چند لمحات مانگ رہا ہے. آپ نے گزارش کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں منبر کے پاس میں آپ جو ہے پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ ہاتھ دراز کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے آقا میری دنیا والے جانتے ہیں کہ احمد رضا کو آپ سے عشق کتنا ہے, آپ سے کتنی محبت ہے, لیکن اے اللہ کے نبی اگر بات نہیں آپ کو احمد رضا کو محبت ہے پوری دنیا کہتی ہے, اپنے کہتے ہیں, بیگانے کہتے ہیں, اے رشتے دار کہتے ہیں, خاندان والے کہتے ہیں, دوسرے ملک والے کہتے ہیں, ہر انسان یہ کہہ رہا ہے احمد رضا کو نبی سے محبت ہے, لیکن اللہ کے رسول اے پیارے نبی میں اس وقت اس بات کو تسلیم کروں گا جب آپ خود اس بات کے گواہ بن جائے اور آپ خود بخود جو ہے آپ میرے سامنے حاضر ہو جائے, آپ اپنے چہرے اندر کا مجھے دیدار کرا دے تو میں اپنی محبت میں اپنے آپ کو میں کامیاب سمجھوں گا. حضرات گرامی حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ابھی آپ رو کر رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, سماجوں کو کر رہے ہیں. سیدنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے قبر اندر سے تشریف لاتے ہیں, منبر رسول پر جلد فروز ہوتا ہو جاتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس وقت ایک جو ہے آپ پتا لکھتے ہیں اللہ کی سر پاب قدم شان ہے. یہ حضرات گرامی یہ کا لفظ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو حاضر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے, جو دور ہوتا ہے نظر سے دور ہوتا ہے غائب ہوتا ہے کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ حضرت وہ مولانا وہ شخص وہ صاحب یہ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت قدموں میں تشریف فرما ہے اللہ کی سر پاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. آپ جو ہے اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور آپ تحریر کروا رہے ہیں, آپ پتہ لکھ رہے ہیں اللہ کی سر پاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو بتاتا ہے ایمان ہی ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محترم حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو وہ کمال عطا فرمایا ہے اور وہ جو ہے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی باتوں کی آنکھوں سے آقا کو دیکھا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرات کے آقا جو ہے کسی انسان کے سامنے جو ہے آپ پردہ فرمانے کے بعد تشریف لائے ہو, حضرات اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے سرکار کی شان یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے سے پوشیدہ ہوئے ہیں, وہ مرے نہیں ہیں, وہ مٹی میں نہیں ملے ہیں. حضرات گرامی یہ بات اس سے پہلے بہت مرتبہ ظاہر ہوئی ہے. حضرات ایک شخص میں جو ہے قرآن شریف جب उसके पास तक पहुंचा, बद्दू था, देहाती था, गवार था। उसके बाद जब कुरान पहुंचा, जब उसने कहा अरे अन्नमे हम किसम जा का पुस्तक जब उसने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी तो पढ़ने के बाद वो रोने लगा। यानी इसका मतलब यह है कि जब तुम अपनी जाने पर जुल्म कर लो, जब तुम अपनी जाने पर जुल्म कर लो तो फिर तुम मेरे महबूब के पास आ जाना। यानी गुनाह कर करके, मासूमियत कर करके जब तुम अपने आप को हलाक कर लो तो मेरे नबी के पास आ जाना। मेरे नबी के पास आ जाना उस वक्त की बात नहीं है कि जब तक मेरे नबी हयात रहे तब आना। ये कुरान शरीफ का है हुक्म है, ऐलान आम है सुबह कयामत तक के लिए कि जब जब तुम अपनी जाने पर जुल्म कर लो, जिस जमाने का इंसान जो भी जुल्म कर लो, जो भी गुनाहगार मासूमियतकार खताकार सियाकार हो, वो अपने गुनाहों की तलाफी चाहे तो फिर वो जाऊंगा पुस्तक करूंगा, वो मेरे नबी के पास आ जाए पुस्तक करूंगा तो वो अल्लाह से उसकी मकबूलत की दुआ करे। तो अगर वो उसकी मकबूलत की दुआ कर दे कौन वो महबूब अल्लाह का नबी पुस्तक करूंगा पुस्तक करा नहीं वो रसूल। अगर रसूल तुम्हारी मकबूलत की दुआ अल्लाह से कर दे लगा जब अल्लाह के बराबर नहीं ना तो फिर तुम अल्लाह को बेहिसाब बात करने वाला पाओगे। हजरात इसलिए होगी इस बद्दू ने इस देहाती ने कुरान पाक पढ़ा, पढ़कर जो है वो फौरन सोचा मैं तो गुनाहगार हूँ बदकार हूँ। कुरान को सीने से लगाया और मदीने का रास्ता पूछता हुआ, मक्के का रास्ता पूछता हुआ मक्के में पहुंचा। उसे पता था कि वो नबी मक्के में आया है, मक्के में पहुंचा, मक्के वाले ने बताया, मदीना चले गए, मदीना पहुंचा, मदीना ने गली पूछे में दीवाने की तरह पूछता फिर रहा है, पागलों की तरह पूछता फिर रहा है। मदीने का नबी का पता बताओ, नबी की तरफ नबी का छिकाना बताओ, नबी का घर बताओ, आंगना के नाम का घर बताओ, जहां अब्दुल्ला के लश्कर जिगर का घर बताओ, मुझे मिलना है। वो दीवाना कहने लगे, पागल कहने लगे। किसी ने कहा अरे वो नबी है, वो उसके इंतकाल कर चुका है, वो दुनिया से जा चुका है। ये उसने कहा ये नहीं हो सकता है, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान मेरे पास है, कुरान को मैं साथ लाया हूं अपनी गवाही की बुनियाद पर, कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है। तो नबी के पास आ जाना, अगर नबी मर जाते तो फिर अल्लाह के लिए कुरान से आयत निकाल देना चाहिए था, वो कुरान में नहीं रहना चाहिए था। मैं नबी के पास आया हूँ, अपने गुनाहों की मकबूलत कराने आया हूँ। अफराद को रोता हुआ दीवाना वार जो है वो रोजे रसूल पर पहुंचा। लोगों ने बताया यही उसका ठिकाना है, रोजे रसूल के पास जाकर कुरान को रखा और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, परवरदिगार आलम वो नबी मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस नबी के पास तुम्हें आने की बात कही थी, अगर उस नबी को दुनिया से उठाना ही था तो उसके साथ साथ कुरान की सायद को निकाल देना था, क्योंकि इसके बाद जो है लोग आएंगे पढ़ेंगे इस्लाम में दाखिल होंगे उस नबी को तलाश करेंगे। हजरात वो गुलाम जो है वो दीवाना जो है रोजे रसूल के पास गिर गिरा रहा है, रो रहा है। हजरात गिरानी रोजे रसूल से आवाज आती है, ऐ मेरे उम्मती तुम परेशान मत हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करवा दे। तो मोहतरम हजरात सहाबा इकराम जो है उन्होंने वो मकाम हासिल किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत लोगों से मुलाकात की है, बहुत लोगों के सामने जाहिर हुए हैं और फिर आका ने यह भी इशारा फरमाया है अगर कुरान में किसी को मैं नजर आ जाऊं तो वो मैं ही होता हूं, मेरी शक्ल शैतान नहीं इख्तियार कर सकता है। अगर मैं किसी को कुरान में नजर आ जाऊं तो उसको मैं ही नजर आया हूं, गोया कि उसने हकीकत में मुझे देख लिया है और उसको वही शक्ल हासिल होता है। कितने लोग कितने बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो है पेशानी का बोसा लिया, उनके रुखसार का बोसा लिया, जब तक वो जिंदा रहे उनके जिस्म से बेहतरीन खुशबू निकलती रही। तो मोहतरम हज़रात सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो है ऐसे कार है नुमाया अंजाम दिए हैं जो आज हमारे लिए, और हकीकत यह है कि उस जमाने में सैयदना इमाम अहमद रज़ा की तालीमात ने शरीयत पर एहसान फरमाया है। आपने वो किताबें लिखी है, आज अगर आप उन किताबों के मुताले में लाए और आप अगर उन किताबों के पढ़े तो आप जो है दुनियाए मुफ्तियत और दुनिया वहादियत के लिए आप जो है एक शमशीर बेनियान बन सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इमाम अहमद रज़ा की इश्क़ रसूल में दीदी किताबें जो लिखी गई है आप उनको अपने मुताले में लाइए। हजरत इमाम अहमद रज़ा ने अपने पहले पेड़ से जो है दुनिया को इस्लाम का पैगाम दिया है। हजरात अलीगढ़ के जो दानिशवर शख्स जो है वो आपस में कहने लगे कि वो बरेलवी लोग जो है ये कहते हैं कि वसीले के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, अगर तुम्हें खुदा को मानना, अगर खुदा को पहचानना है तो तुम्हें सच्चाई कुरान का दामन थामना पड़ेगा, अलिया इल्जाम के पास जाना पड़ेगा, अगर तुम्हें अल्लाह से मिलना है तो तुम्हें अलिया कुरान की खानकाह में वक्त गुजारना पड़ेगा, अगर तुमने अलिया कुरान को राजी कर लिया तो तुमसे रसूल राजी हो जाएंगे। क्योंकि रसूल की जिंदगी के दो बाब है, एक अमली है और एक पहली है। तो खानकाह में आना पड़ेगा, अगर आपकी खोली जिंदगी को देखना है तो आपको जो है मदरसे में जाना पड़ेगा, आलिम बनना पड़ेगा, हाफिज बनना पड़ेगा, हदीस पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम हदीस पढ़ोगे तो तुम्हें नबी के फरमान मालूम होंगे, खानकाह में आओगे तो नबी का अमल मालूम होगा। प्यारे आका ने सलातो सलाम में जैसी नमाजें पढ़ी है और इंडिया कुरान में नमाजें पढ़ी है, आप उठाकर देखो इंडिया कुरान की जिंदगी, पुराने तीन रोजे आलम दस्तगी 40 साल तक ईशा के वजू से खबर की नमाज आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह किराम की जिंदगी है। प्यारे आका की जिंदगी देखिए हजरत गिलानी के पाए आप जो है इतना लंबा इतना तवील कयाम करते हैं कि पाए मुबारक आपके पद जो है वर्द आ जाता है,